ये आकाशवाणी है। अब आप प्रियंका अरोड़ा से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री फाम मिन चिन के साथ वार्ता की। वार्ता के बाद दोनों नेताओं ने वियतनाम के ना तरांग में दूरसंचार विश्वविद्यालय में वर्चुअल माध्यम से सेना सॉफ्टवेयर पार्क का उद्घाटन किया। ये भारत और वियतनाम के बीच की सहयोगी परियोजना है। भारत ने इस परियोजना के लिए $5 मिलियन का सहायता अनुदान प्रदान किया है। दोनों पक्षों ने सीमा शुल्क, क्षमता वर्धन, कृषि अनुसंधान और शिक्षा, समुद्री विरासत, औषधीय पौधों तथा कानूनी क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। प्रसार भारती और वॉयस ऑफ वियतनाम ने रेडियो और टेलीविजन में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। दोनों पक्षों ने ऋण सीमा समझौते तथा वियतनाम में माइसोन यूनेस्को विश्व विरासत स्थल की पुनः बहाली पर समझौता ज्ञापनों पर भी हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और वियतनाम के संबंध पिछले 10 वर्षों में प्रगाढ़ हुए हैं। दोनों देशों के संबंधों ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी को एक आकार दिया है। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार में 85% की वृद्धि हुई है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व में सर्वोच्च न्यायालय में 7 न्यायाधीशों की एक पीठ ने आज बहुमत से राज्य विधानमंडल द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के भीतर उपवर्गीकरण की अनुमति देने संबंधी फैसला सुनाया। सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2004 के ईवी चेन्नैया के फैसले को खारिज कर दिया। ईवी चेन्नैया ने फैसले में कहा था कि अनुसूचित जाति के आरक्षण का उपवर्गीकरण भर्तियों और सरकारी नौकरियों में स्वीकार्य नहीं है। कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज राज्यसभा में बताया कि देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के 359 पद रिक्त हैं। एक लिखित उत्तर में उन्होंने कहा कि पूरे भारत में जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में भी 5,238 रिक्तियां खाली हैं। श्री मेघवाल ने कहा कि मौजूदा रिक्तियों को शीघ्र भरने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश की जिला अदालतों में रिक्त पदों को भरना उच्च न्यायालयों और राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 आज गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में पेश किया। ये विधेयक 2005 के आपदा प्रबंधन अधिनियम को संशोधित करने के लिए पेश किया गया। इस विधेयक का उद्देश्य राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के कार्य को कुशल बनाना है। सरकार ने कहा है कि वे देश में रेल दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए प्रतिबद्ध है। लोकसभा में अपने मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा का जवाब देते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यूपीए शासन के दौरान प्रतिवर्ष 171 की तुलना में ये घटकर औसतन 68 प्रतिवर्ष रह गई है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी पक्षों को और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। केरल में वायनाड जिले के मुंडकई, अट्टामला और चूरलमलाई क्षेत्रों में बचाव और राहत अभियान जारी है। इस जिलों में मंगलवार को हुई भूस्खलन की घटना के कारण जान माल की काफी क्षति हुई है। राहतकर्मी प्रभावित क्षेत्रों में जमे मलबों के ढेर में दबे जीवित बचे लोगों और मृतकों की तलाश कर रहे हैं। जंगलों की सीमा से लगे पुंचिरी वट्टोम क्षेत्र में जीवित बचे लोगों की तलाश जारी है। तलाशी अभियान में खोजी कुत्तों को भी तैनात किया गया है। अब तक लगभग 260 लोग इस दुर्घटना में मारे गए हैं। 90 शवों की पहचान नहीं हो सकी है। पेरिस ओलंपिक में निशानेबाज स्वप्निल कुसाले ने पुरुषों की 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन स्पर्धा में भारत को आज तीसरा कांस्य पदक दिलाया। वे स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय निशानेबाज हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी है। भारत ने अब तक 3 पदक निशानेबाजी में जीते हैं। वहीं महिलाओं की 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन में सिफत कौर और अंजुम मुदगिल फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई। हॉकी के पूल बी मैच में भारत बेल्जियम से 1-2 से हार गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।